بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ریڈیو تہران ہے, اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز.
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے. شروتاؤں, صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کاریکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی تلاوت ایوم اس کے انواع سے کریں گے. آج آپ پوتر قرآن مجید کے سورہ حجرات کی 12ویں اور 13ویں آیتوں کی تلاوت اور انواع سنیں گے. قاری ہیں شری عبد الباسط.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم.
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے. ہے ایمان لانے والوں, بہت سی سوچوں سے بچو کہ کچھ سوچیں پاپ ہوتی ہیں, اور ٹوہ میں مت رہو اور نہ تم میں سے کوئی پیٹھ پیچھے کسی کی نندہ کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا ماس کھائے؟ تمہیں سوئم اس بات سے گھن آئے گی. اور ایشور سے ڈرتے رہو, نسندیہ ایشور توبہ سویکار کرنے والا اور دیاوان ہے. ہے لوگو, ہم نے تمہیں ایک پرش و استری سے پیدا کیا اور تمہاری بہت سی جاتیاں اور ونش بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. निसंदेह ईश्वर की दृष्टि में तुम्हारे बीच सबसे अधिक प्रतिष्ठित वो है जो ईश्वर से सबसे अधिक भय रखता है। निसंदेह ईश्वर अत्यंत ज्ञानी और जानकार है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, प्रसारण को आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9390 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज शुक्रवार है, दिसंबर की 3, आज़र की 12 और रबी उस्सानी की 27 तारीख। कार्यक्रम में पहले आप विगत की ही भांति विश्व समाचार सुनेंगे, फिर हम आपको राजनीतिक चर्चा सुनवाएंगे। राजनीतिक चर्चा के उपरांत विशेष कार्यक्रम पेश किया जाएगा और सभा के अंत में आपका मनपसंद कार्यक्रम पेश किया जाएगा, पत्र संसार। तो श्रोताओं, ये थी आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपनी सुविधा के अनुसार वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, hindi@ws.irib.ir। कार्यक्रमों पर आप अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं, hindi@ws.irib.ir। और अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। आयतुल्ला खातिमी का कहना है कि सारे प्रतिबंध हटाए जाने से कम पर ईरान राजी होने वाला नहीं है। लीबिया के पूर्व तानाशाह के बेटे को इस देश के राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिल गई है। जर्मनी की चांसलर आधिकारिक रूप से अपने पद से अलग हो गई हैं। फ्रांस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को जोकर कहकर संबोधित किया है। और अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। आयतुल्ला खातमी का कहना है कि ईरानी राष्ट्र सारे प्रतिबंधों को हटाए जाने से कम पर किसी भी स्थिति में राजी नहीं होगा। आयतुल्ला सैयद अहमद खातमी ने यह बात आज जुमे के खुतबे में कही है। उन्होंने कहा कि वियना के लिए ईरान ने बहुत ही अनुभवी शिष्टमंडल भेजा है। अहमद खातमी के अनुसार ईरान का शिष्टमंडल अनुभवी होने के साथ ही बहुत वीर भी है, जो अंतिम समय तक सारे प्रतिबंधों को हटाए जाने के लिए संघर्ष करता रहेगा। उन्होंने कहा कि वियना गए ईरानी शिष्टमंडल ने बहुत ही स्पष्ट ढंग से अपनी नीतियों को पेश कर दिया है। जनरल इस्लामी ने कहा है कि हमने दुश्मन को कमजोर बना दिया है और ईरान अतिग्रहित होने वाली भूमि नहीं है। इस्लामी क्रांति संरक्षक बल सिपाही पासदारान के प्रमुख ने कहा है कि इस्लामी व क्रांतिकारी ईरान आज मजबूत व शक्तिशाली है। उनका कहना था कि इस बात को हर दुश्मन जानता है कि ईरान का अतिग्रहण नहीं किया जा सकता। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने ईलाम शहर के शहीदों के सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में यह कहा कि हमारा सबसे बड़ा गर्व यह है कि हम ईरानी जनता के सेवक हैं। हमारी सबसे बड़ी आरजू ईरानी राष्ट्र की जनता की इच्छाओं पर कुर्बान हो जाना है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय इमाम खुमैनी पर हमें हमेशा सलाम भेजते रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें इज्जत, स्वाधीनता और एकता का रास्ता दिखाया। जनरल इस्लामी ने ईलाम को शहीदों की भूमि बताया और कहा कि ईलाम के लोग پہاڑ کی بھانتی 8 تک پوتر پتی رکشا کے کال میں بہادری کے ساتھ دشمن کے مقابلے پر ڈٹے رہے، یہ وہ کام ہے جس کی پرشنسا کی جانی چاہیے۔ سنچار مادھیموں نے عراق میں داعش کے نئے حملے کی سوچنا دی ہے۔ فرانس پریس کے انوسار شکروار کو داعش کے حملے میں کم سے کم 10 عام لوگ مارے گئے۔ اسکائی نیوز نے بھی شکروار کو اتری عراق میں داعش کے ہاتھوں کئی عام ناگرکوں کے مارے جانے کی سوچنا دی۔ اس سمبندھ میں اس نے وستار سے کچھ نہیں بتایا۔ اس سے پہلے عراق کے کردستان شیتر کے کرد سرکشا بلوں پیشمرگا نے ایک بیان جاری کر کے مخمور نامک شیتر میں داعش کے حملے کی بات کہی تھی۔ پیشمرگا کے بیان میں بتایا گیا تھا کہ عراق میں آتنکوادیوں نے مخمور نگر میں عام لوگوں پر حملہ کر کے کئی لوگوں کی ہتیا کر دی۔ ادھر عراقی سوتروں نے بتایا کہ نینوا پرانت کے خدرجا گاؤں پر داعش نے حملہ کر کے کم سے کم 3 استھانیہ لوگوں کی ہتیا کر دی۔ اس حملے میں کم سے کم 2 لوگ گھائل ہوئے ہیں جن کی حالت بری بتائی جا رہی ہے۔ لیبیا کے ایک نیایالے نے فیصلہ سنایا ہے کہ یوگیتا رد ہو جانے والے قذافی کے بیٹے سیف الاسلام اب اس دیش کے راشٹرپتی چناؤ میں بھاگ لے سکتے ہیں۔ اس سے پہلے لیبیا کے چناؤ آیوگ نے اس دیش کے پورو تاناشاہ کرنل قذافی کے بڑے بیٹے سیف الاسلام کے نامانکن کو رد کر دیا تھا، جس کے کارن وہ لیبیا کے راشٹرپتی چناؤ میں بھاگ لینے سے ونچت رہ جاتے۔ عدالت نے سیف الاسلام کی اپیل پر وچار کرنے کے بعد ان کو چناؤ میں بھاگ لینے کے لیے یوگی بتایا ہے۔ لیبیا میں 11 کے بعد راشٹرپتی چناؤ کا آیوجن ہو رہا ہے، جس میں سیف الاسلام اور سینک کمانڈر خلیفہ ہفتر کا نام ادھک چرچا میں ہے۔ لیبیا کے چناؤ آیوگ نے راشٹرپتی پد کے چناؤ کے لیے نامانکت 25 لوگوں کے نامانکن رد کر دیے تھے، جن میں قذافی کے بیٹے سیف الاسلام بھی شامل تھے۔ لیبیا کے راشٹرپتی پد کے چناؤ کے لیے 98 لوگوں نے نامانکن کروایا تھا۔ اس دیش میں راشٹرپتی پد کے لیے چناؤ 24 کو ہوگا۔ جرمنی کی چانسلر اینجلا مارکل نے آدھیکارک روپ سے اس دیش کے چانسلر کے پد سے تیاگ پتر دے دیا ہے۔ تسنیم سماچار ایجنسی کے انوسار 16 تک جرمنی کی ستا میں رہنے کے بعد گروار کی رات اینجلا مرکل اب آدھیکارک روپ سے راجنیتی سے الگ ہو گئیں۔ جرمنی کے رکشا منترالے کے بھیتر آیوجت ودائی سماروہ میں مرکل نے جرمنی کی جنتا کا آبھار ویکت کیا، کیونکہ انہوں نے ان پر بھروسہ کیا تھا۔ اس کے اترکت اینجلا مرکل نے ان سواستھ کرمچاریوں کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے کورونا مہاماری کے دوران دیش کی سیوا کی۔ انہوں نے اپنے 16 ستا کال کو بہت ہی اتار چڑھاؤ والا بتایا۔ مرکل کا کہنا ہے کہ ستا کو چھوڑنے کے بعد میں اپنا ادھک سمے ادھیان اور آرام میں گزاروں گی۔ فرانس نے برٹن کے پردھان منتری کو جوکر کہہ کر سمبودھت کیا ہے۔ فرانسیسی راشٹرپتی نے کہا ہے کہ برٹن کے پردھان منتری بوریس جانسن ایک جوکر ہیں۔ فرانسیسی سنچار مادھیموں نے گروار کو اعلان کیا کہ اس دیش کے راشٹرپتی میکرون نے کہا ہے کہ برٹن ایک بڑا دیش ہے جس کی باگ ڈور ایک جوکر کے ہاتھ میں ہے۔ ایک فرانسیسی پترکا کے انوسار میکرون نے کہا کہ برٹن کے پردھان منتری کے وچار اور درشٹی کون ایک گھٹیا انسان جیسے ہیں۔ فرانسیسی سنچار مادھیموں نے برطانی سنچار مادھیموں کے حوالے سے بتایا ہے کہ میکرون کے بیان سے بوریس جانسن کافی کرودھت ہیں۔ جانسن منتری منڈل کے ایک منتری نے بھی کہا ہے کہ میکرا کی باتوں سے انہیں آشچر ہے اور وہ نراش ہوئے ہیں۔ فرانس اور برٹن کے بیچ جو سمندری مارگ ہے اس میں مچھلی پکڑنے، اتری آئرلینڈ کی سیما، امریکہ، برٹن اور آسٹریلیا دوارا پرمانو پن ڈبی کا نرمان اور ابھی حال ہی میں انگلش چینل میں شرارتھیوں کے ڈوب کر مارے جانے جیسے وشیوں کو لے کر برٹن اور فرانس کے بیچ گہرے مت بھید اتپن ہو گئے ہیں۔ ابھی حال ہی میں انگلش چینل میں فرانس سے برٹن جانے والے شرارتھیوں کی ناؤ ڈوب گئی تھی، جس میں 72 شرارتھیوں کی موت ہو گئی تھی۔ اس معاملے کو دونوں دیشوں نے ایک دوسرے کا ذمہ دار بتانے کا پریاس کیا تھا۔ اسی پرکار اس معاملے کو لے کر دونوں دیشوں نے ایک دوسرے کے خلاف کافی سخت بیان دیے تھے۔ افغانستان کے پورو راشٹرپتی حامد کرزئی نے اس دیش میں امریکہ کی سینیہ گتیویدھیوں کے بند کیے جانے کی مانگ کی ہے۔ حامد کرزئی نے کہا ہے کہ اگر امریکی افغانستان میں اپنا ڈرون اڑائیں یا پھر یہاں پر اپنی سینیہ گتیویدھیاں کریں تو یہ غلط کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ سے دوستی تو چاہتے ہیں، کنتو دوستی اور یدھک ویمان کی اڑان میں کافی انتر ہے۔ اسی پرکار انہوں نے افغانستان سے نکل جانے والے افغانوں کا آہوان کیا ہے کہ وہ سودیش لوٹ آئیں اور اپنے دیش کے نرمان میں لگ جائیں۔ امریکہ افغانستان سے نکل جانے کے بعد آتنکوادی گٹ داعش سے مقابلے کے بہانے اس دیش میں وبھن کھیتروں پر ہوائی حملے کر چکا ہے۔ طالبان نے ان حملوں کی برسنا بھی کی ہے اور اسے وہ افغانستان کی سمپربھوتا کے خلاف بتاتا ہے۔ طالبان نے افغانستان کے تخار پرانت میں ایک وواہ سماروہ پر حملہ کر دیا جس میں کئی لوگ گھائل ہوئے ہیں۔ آوا کی رپورٹ کے انوسار تخار پرانت کے استھانی سوتروں نے بتایا ہے کہ طالبان کے سرکشا بلوں نے گروار کی رات اس پرانت کے چاہ آب اپنگر میں ایک وواہ سماروہ پر حملہ کر دیا۔ پرتیکش درشیوں کا کہنا ہے کہ وواہ سماروہ میں ناچ گانا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے طالبان نے یہ حملہ کیا ہے۔ پرتیکش درشیوں کے انوسار اس وواہ سماروہ میں پورو سرکار کے کچھ کمانڈر بھی موجود تھے۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ زائونی شاسن کے ساتھ اب آر پار کی لڑائی کا سمے آ گیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ نے ترکی کے استنبول نگر میں آیوجت ایک کانفرنس میں کہا ہے کہ جو پریورتن ہوئے ہیں وہ بہت مہتوپورن ہیں کیونکہ ان میں فلسطینی شیتریہ اور اسلامی جنتا کی اچھائیں شامل ہیں۔ ہنیہ نے کہا تھی کہ اتگرہن کاری زائونی شاسن سے ایتہاسک جنگ کا سمے اب آ پہنچا ہے۔ ایسے میں اسلامی جگت کو چاہیے کہ وہ نہ کیول زائونیوں سے مقابلے کا کارکرم بنائے بلکہ فلسطین کو آزاد کرانے کے ساتھ ہی ساتھ فلسطینی شرارتیوں کی گھر واپسی کا بھی کارکرم بنائے۔ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ زائونی شاسن سے مقابلے کے لیے سہکاریتا ایک واستوک سہکارتا اور سہیوگ ہونا چاہیے۔ روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتین 6 دسمبر کو بھارت کی یاترا پر آ رہے ہیں۔ ایک دن کی اس یاترا کے دوران روسی راشٹرپتی بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی سے بھی ملاقات کریں گے۔ بھارت کے ودیش منترالے کے پروکتا نے پوتین کی بھارت یاترا کی پشٹی کی ہے۔ دونوں راشٹرادھیکشوں کی بھیٹ وارتا کے اترکت 2+2 سمٹ بھی ہوگی جس میں بھارت اور روس کے ودیش اور رکشا منتریوں کے ساتھ ہی ساتھ دونوں دیشوں کے ورش ادھیکاری بھی بھاگ لیں گے۔ بھارت اور روس کے بیچ یہ 21ویں سمٹ ہوگی۔ اس یاترا کے دوران شیتری مدوں کے ساتھ ہی آپسی اور انتراشٹری مدوں پر بھی وچار ومرش کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے وشو سماچار سماپت ہوئے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ आपका स्वागत है कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में। राजनीतिक चर्चा में आज हम बात करेंगे वियना में जारी परमाणु वार्ता की, जहां ईरान ने अपना दस्तावेज पेश किया है। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा में हम एक नजर डालेंगे बगदाद की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हैसियत पर। भारत नियंत्रित कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता का कहना है कि कश्मीरियों को एकजुट होकर کشمیر کے ادھیکاروں کے لیے لڑنا ہوگا۔
ہمیں اس وقت ماحول ویشیٹ نہیں کرنا چاہیے، ماحول کو ایسا خراب نہیں کرنا چاہیے کہ آپس میں ہی لیڈر لڑ رہے ہیں۔
یہ وشے بھی راجنیتک چرچا میں شامل رہے گا۔ تو چرچا کے وشے یہی ہیں، آرمبھ کرتے ہیں پرمانو وارتا سے۔ وینا میں ہو رہی پرمانو وارتا کے دوران اسلامی گڑتندر ایران کی اور سے ایک مہتوپورن دستاویز پیش کیا گیا ہے۔ وینا سے آئی آر آئی بی کی سنواداتا کاظمی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں قائم رضوی۔
وینا میں جاری پرمانو وارتا میں ایرانی وارتاکار ٹیم کے پرمکھ نے بتایا ہے کہ ایران کی اور سے دوسرے پکشوں کو پرتیبندھوں کے ہٹانے اور پرمانو مدعے کے بارے میں مسودہ دے دیا گیا ہے۔ ایران کے ودیش اپ منتری اور پرمکھ وارتاکار علی باقری نے کہا ہے کہ ہم نے دوسرے پکش کو اپنا پرستاؤ پیش کر دیا ہے اور اب امید ہے کہ بہت جلدی کسی سہمتی پر پہنچیں گے، جس کے بعد گمبھیرتا سے وارتا کا سلسلہ آگے بڑھے گا اور انہیں جو دو دستاویز پیش کیے گئے ہیں ان کے بارے میں چرچا کی جائے گی۔ ایران کے ودیش اپ منتری نے کہا ہے کہ ہم نے دوسرے پکشوں سے کہہ دیا ہے کہ وارتا جاری رکھنے کے لیے ہم پوری طرح سے تیار ہیں، ہم وینا اسی لیے آئے ہیں کہ بات چیت کی جائے۔ ان دونوں دستاویزوں کا پیش کیا جانا اس بات کا چنھ ہے کہ وارتا میں ہم پوری طرح سے گمبھیر ہیں۔ ہم نے اس دستاویز کے بارے میں اپنا رخ، اسٹینڈ اور اپنی سوچ پورے بیورے کے ساتھ پیش کر دی ہے۔ شری علی باقری نے اسی طرح وینا میں آئی اے ای اے کے مکھیالے میں اس سنستھا کے پرمکھ رافائل گروسی سے بھیٹ وارتا کی۔ وینا کے کوبرگ ہوٹل میں دوپکشی اور بہو پکشی بیٹھکیں پرمانو وارتا کے آخری دور تک چلتی رہیں گی۔ وینا سے آئی آر آئی بی کے لیے کاظمی کی رپورٹ۔
عراق کی راجدھانی بغداد بہت مہتوپورن شہر ہے، کئی آیاموں سے اس شہر کا مہتو بہت زیادہ ہے۔ جلال خالدی کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں محمد مہدی۔
عراق کا ایتیہاسک شہر بغداد کازمین کے دھارمک استھلوں کے علاوہ بھی انیک دھارمک اور پریٹک استھلوں سے مالا مال ہے۔ بغداد کے کیندر میں دجلہ ندی بہت سندر درشیہ پیش کرتی ہے۔ یہ جگہ پریواروں کی سیر اور تفریح کا کیندر بن گئی ہے۔ اسی ندی کے تٹ پر منتصریہ مدرسہ ہے جو 1000 سال سے ادھک پرانا ہے۔ منتصریہ پراچین اسلامی عمارت ہے جس کا سمبندھ عباسی شاسن کال سے ہے۔
المدرسہ المستنصریہ القدیمہ البناء القدیم۔
استھانیہ بزرگ کہتے ہیں کہ منتصریہ مدرسہ بغداد کے درشنی استھلوں میں سے ایک ہے۔ منگولوں نے جب بغداد پر حملہ کیا تھا تو اس مدرسے کے بھیتر موجود ساری کتابوں کو دجلہ ندی میں پھینک دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے قیمتی کتابوں کی سیاہی سے دجلہ ندی کے پانی کا رنگ بدل گیا تھا۔ اس مدرسے کے قریب شیخ کلینی کا مزار ہے جو اسلامی اتہاس کی مہان ہستی ہیں۔ شیخ کلینی کا لقب سقط الاسلام ہے اور ان کا سمبندھ ایران سے تھا۔ شیخ کلینی کی قبر کے پاس کئی اتہاسک بازار ہیں۔ ایک بازار کا نام کتاب المتنبی ہے۔ اس کے پاس ہی دوسرا بازار ہے جہاں عراق کے ہست کلا ادیوگ کے نمونوں کو رکھا گیا ہے۔ یہ اتپادوں کے لیے وشیش ہے۔ ایک یوا کا کہنا ہے کہ یہ بغداد کا ایک ماتر ہست کلا ادیوگ بازار ہے۔ بہت سارے لوگ جب بغداد گھومنے آتے ہیں تو دھارمک استھلوں کی زیارت کے بعد صفافیر بازار میں آتے ہیں جو تانبے کا بازار ہے۔ الصفافیر بازار کے پیچھے بھی اسلامی جگت کی بڑی مہان ہستی کی قبر ہے۔ یہ امام زمان علیہ السلام کے چوتھے اور انتم پرتندی کا مزار ہے جن کا نام شیخ ابو الحسن علی ابن محمد السمیری تھا۔ وہ امام زمان علیہ السلام کے آخری پرتندی تھے۔ بغداد سے آئی آر آئی بی کے لیے جلال خالدی کی رپورٹ۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔
और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
भारत नियंत्रित कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कश्मीरियों से एकजुट होकर कश्मीर के अधिकारों के लिए लड़ने की अपील की है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता सिप्त मोहम्मद हसन।
जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि मौजूदा समय में तमाम राजनीतिक दलों को एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि अगरचे वो अलग अलग अपने दलों से वक्तव्य जारी करेंगे, परंतु हमें चाहिए कि हम सर्वसहमति के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें।
हमें इस वक्त माहौल विशिएट नहीं करना चाहिए, माहौल को ऐसा खराब नहीं करना चाहिए कि आपस में ही लीडर लड़ रहे हैं। इस वक्त हमको मिल के ये साफ करना, चाहे अपने अपने फोरम से करें, अपने अपने स्टेज से करें, लेकिन बात एक ही करें।
जम्मू में एक बड़ी जनसभा के बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कश्मीर की जो मौजूदा स्थिति है, इसमें शांति लाने की जरूरत है और इसके लिए नई दिल्ली को भी प्रयास करने होंगे। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता पिछले कई दिवस से जम्मू कश्मीर में काफ़ी सक्रिय है और वो जम्मू से लेकर कश्मीर तक जनसभाएं कर रहे हैं। उन्होंने नई दिल्ली पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास जीतने के लिए जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस करें।
कि किसी रियासत को यूनिट टेरिटरी बनाएगी, वरना आमतौर पर यूनिट टेरिटरी को स्टेट बनाया जाता है। ये तो ऐसा हुआ, डायरेक्टर जनरल पुलिस को थानेदार बना दिया, चीफ मिनिस्टर को एमएलए बना दिया और चीफ सेक्रेटरी को पटवारी बना दिया। ऐसा वाला काम है, ये कोई अकलमंद आदमी काम नहीं कर सकता। कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, अकल कि ऐसी बात सोचना जो हो नहीं सकती, एक अनहोनी चीज हो गई।
उन्होंने धारा 370 और 35 के ए के हवाले से वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि ये मामले सुप्रीम कोर्ट में है, परंतु मेरा ये मानना है कि दो ही ऐसे फोरम हैं जिनसे ये वापस हो सकते हैं, एक लोकसभा और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा कि अगर हम एकजुट हो जाएंगे तो हमें ये चीजें वापस मिल सकती हैं, परंतु उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों का विश्वास जीतने के लिए जरूरी है कि उनकी शिनाख्त उन्हें वापस की जाए और इसके लिए जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाना चाहिए। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमने बार बार नई दिल्ली को यह समझाने का प्रयास किया है कि जम्मू कश्मीर में विकास अपनी जगह, परंतु शांति लाने के लिए तमाम वर्गों को एतमाद में लेने की जरूरत है, परंतु हमारी बात अभी तक नहीं सुनी गई। उन्होंने इस अवसर पर कहा,
लेकिन यहाँ किसी को तकलीफ होती है, कश्मीरी पंडित को हो, मुसलमान को हो, तो वो दर्द अभी भी महसूस करते हैं और शायद इसी का नाम कश्मीर।
इस बीच जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने एक बार फिर श्रीनगर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद को नमाजियों के लिए बंद कर दिया। उल्लेखनीय है कि पिछले दो वर्षों से यहां पर नमाज जुमा की सभा आयोजित नहीं हो रही है और ये बताया जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल को लेकर ऐसा किया जा रहा है, परंतु जितने भी धार्मिक दल हैं वो उसे धार्मिक मामलों में मुदाखलत करार दे रहे हैं। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर प्रशासन से कहा है कि ऐतिहासिक जामा मस्जिद को नमाजियों के लिए खोल देना चाहिए। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसके बाद आप सुनेंगे सभा का अंतिम कार्यक्रम पत्र संसार।
प्रिय श्रोतागण, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में हाजिर है स्वाति और मोहम्मद मेहंदी का सलाम स्वीकार करें।
श्रोताओं, इंसान एक सर्वश्रेष्ठ सामाजिक प्राणी है। महान ईश्वर ने इंसान को अपनी उपासना के लिए पैदा किया है। उपासना का ये मतलब नहीं है कि इंसान 24 घंटे केवल नमाज पढ़ता रहे और कोई दूसरा काम न करे, बल्कि उपासना का अर्थ हर वो कार्य जो महान व सर्वसमर्थ ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो और उसे महान ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अंजाम दिया जाए। अगर कोई इंसान महान ईश्वर की प्रसन्नता के लिए किसी इंसान की सेवा करता है, उसकी समस्याओं को दूर करता है, उसके काम आता है, तो ये भी उपासना है। इसी तरह अगर इंसान किसी अपंग, अपाहिज और विकलांग की सहायता करता है तो वो भी इबादत है। दुनिया के हर देश, क्षेत्र और समाज में विकलांग मौजूद हैं। दूसरे शब्दों में, दुनिया का कोई भी क्षेत्र व समाज ऐसा नहीं है जहां कोई विकलांग न हो, और विकलांग की देखभाल समाज के समस्त लोगों की जिम्मेदारी है। इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार जो लोग विकलांग हैं उनकी सहायता की जानी चाहिए और वे सम्मानी हैं। विकलांगों को जिन समस्याओं का सामना है उन पर धैर्य करने के बदले महान ईश्वर उन्हें प्रतिदान देगा। यही नहीं, जो लोग विकलांगों की सेवा करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, महान ईश्वर ऐसे लोगों को भी सवाब देगा। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया है कि जो व्यक्ति किसी नेत्रहीन को मस्जिद या उसके घर तक पहुंचाने में सहायता करेगा तो ईश्वर उसके हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद करने का पुण्य लिखेगा और उसके फरिश्ते उस पर दुरूद भेजेंगे, यहाँ तक कि इंसान अपंग व्यक्ति से अलग हो जाए।
आज समाज में जो लोग विकलांग हैं, वे विशिष्टता लेने के बजाय समाज में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि समाज के लोग उनके प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह करें। समाज में उन्हें उनकी भूमिका निभाने का अवसर दिया जाना चाहिए। वे चाहते हैं कि समाज सेवी संगठनों व संस्थाओं को मजबूत करके उनके भुला दिए गए अधिकारों को उन्हें दिया जाए। समाज में उनके मान सम्मान और प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाना चाहिए।
विकलांग अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समझते हैं। कुछ समाजों में वे इतनी प्रगति कर गए हैं कि वे उन समाजों में स्वयं को एक प्रभावी तत्व के रूप में देखते हैं। इस तरह वे मानवीय प्रतिष्ठा को खत्म होने से रोकने का प्रयास करते हैं।
जो आंकड़े मौजूद हैं उसके अनुसार आज दुनिया की 15% जनसंख्या विकलांगों की है, यानी कुछ लोगों को विभिन्न प्रकार की विकलांगता का सामना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार विश्व के 80% विकलांग विकासशील देशों में रहते हैं। वर्ष 1970 के आरंभ से विकलांगों की हालत पर ध्यान दिया जा रहा है और इस चीज में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 3 दिसंबर वर्ष 1981 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। इसका लक्ष्य यह है कि इस विषय पर ध्यान दिया जाए और समाज के विकलांग लोगों की समस्याओं को समझने के साथ साथ उनके समाधान की दिशा में प्रयास किया जाए।
संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष एक नारा देता है और इस नारे के माध्यम से विकलांग लोगों की किसी न किसी समस्या पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता और उनके समाधान में सहायता मिलती है। कोरोना महामारी की वजह से विकलांग लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं और रुकावटें पैदा हो गईं। कोरोना महामारी की वजह से समाज का शायद ही कोई ऐसा वर्ग रहा हो जो इससे प्रभावित न हुआ हो। कोरोना महामारी की वजह से शिक्षा प्रभावित हुई, स्कूलों को बंद करना पड़ा और काफी दिनों के बाद ऑनलाइन क्लासों का प्रबंध किया गया, परंतु क्लास में मौजूद रहकर बच्चे और लड़के जो कुछ सीखते हैं उसका महत्व ही अलग है। यही नहीं, कोरोना महामारी की वजह से बहुत सी सामाजिक व व्यापारिक गतिविधियां ठप पड़ गईं, लोगों की आमदनी और उसके स्रोत कम हो गए, पर इंसान के जीवन की कुछ जरूरतें ऐसी हैं जिसे इंसान न तो भुला सकता है और न ही खत्म कर सकता है।
कोरोना महामारी की वजह से जहां आम लोगों की समस्याओं में वृद्धि हो गई है, वहीं विकलांग लोगों के लिए इन समस्याओं में कम से कम दो गुना की वृद्धि हो गई। कोरोना महामारी का कहर इतना भयावह है कि बहुत से लोग डर गए हैं और वे घूमने फिरने पर घर में बने रहने को प्राथमिकता दे रहे हैं। हालांकि अब कोरोना का कहर पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया है, पर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। और अब कोरोना के नए वेरिएंट का पता चला है, जिससे लोगों में भय व चिंता उत्पन्न हो गई है। कोरोना के अभिशाप की वजह से बहुत से लोग वाजिब यात्रा के अलावा दूसरी यात्राओं से परहेज कर रहे हैं। इस कारण उन क्षेत्रों, देशों व विभागों को बहुत नुकसान पहुंचा है और पहुंच रहा है, जिनकी आय का मुख्य स्रोत यात्रा व पर्यटन है।
बहुत से देश पर्यटकों को लुभाने के प्रयास में हैं और इसके लिए उन्होंने कई कार्य किए हैं। जैसे उज्बेकिस्तान ने विदेशी पर्यटकों को आश्वासन दिया है कि अगर कोई इस देश में कोरोना 19 से संक्रमित हो जाता है तो वो उसके उपचार के लिए $30,000 देगा। यह पैसा बीमार के उपचार और उसके स्वदेश लौटे पर खर्च किया जाएगा।
इसी तरह इटली के दक्षिण में स्थित सिसिली द्वीप ने घोषणा की है कि अगर कोई विदेशी पर्यटक यहां आता है और यहां आने पर वह COVID-19 से ग्रसित हो जाता है तो इटली आने के लिए उड़ान पर जो पैसा खर्च हुआ है उसका आधा वह देगा। इसी प्रकार सिसिली द्वीप ने घोषणा की है कि होटल के रुकने पर जो पैसा खर्च हुआ है वह उसका एक तिहाई अदा करेगा। इसी प्रकार सिसिली ने घोषणा की है कि संग्रहालय और प्राचीन वस्तुओं को देखने का टिकट भी फ्री होगा।
दोस्तों, जापान ने केवल घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कैंपेन आरंभ कर रखा है और इस कैंपेन ने घोषणा की है कि जो जापानी भ्रमण के लिए आएंगे वो उनके आधे खर्चे का वहन करेगा। इसी मध्य साइप्रस ने भी पर्यटन उद्योग को जीवित करने के उद्देश्य से ऐलान किया है कि जो भी भ्रमण करने के लिए इस देश की यात्रा पर आएगा वो होटल में रुकने, खाने पीने और चिकित्सा के समस्त खर्चों को अदा करेगा, परंतु देश में प्रवेश से पहले यात्रियों का कोरोना टेस्ट लिया जाएगा। साइप्रस ने घोषणा की है कि इसी प्रकार 100 बेड के एक अस्पताल को कोरोना से संक्रमित होने वाले व्यक्तियों के लिए देश में रखा गया है, जिसमें कोरोना से संक्रमित लोगों का उपचार किया जाएगा।
ईरान में कोरोना को लेकर संवेदनशीलता अब भी मौजूद है और कोरोना गाइडलाइंस का अभी भी पालन किया जा रहा है। ईरान के पर्यटन उद्योग को कोरोना से मुकाबला करने वाले आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा है। प्राप्त रिपोर्टें इस बात की सूचक हैं कि कोरोना से ईरान के पर्यटन उद्योग को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंच चुका है और प्रतीत यह हो रहा है कि इससे अधिक नुकसान वहन करने की क्षमता नहीं रखता है और इस उद्योग में सक्रिय लोग कोरोना संकट से उबर जाने के बाद का कार्यक्रम तैयार करने में लग गए हैं।
इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कोरोना के बाद अध्ययन और मार्गदर्शकों के अनुभवों के आधार पर सही तरह से पर्यटन आरंभ हो सकेगा। ये ऐसा संयोग होगा जिसका इससे पहले अनुभव नहीं किया गया है। सैर सपाटे के प्रेमी कोरोना महामारी का संकट खत्म हो जाने के बाद सबसे पहले इस बात का पता अवश्य लगाएंगे कि जब कोरोना फैला था तो उन क्षेत्रों में कोरोना का अभिशाप कैसा था जिन क्षेत्रों की वे यात्रा करना चाहते हैं। इसी तरह कोरोना से संबंधित दूसरे पहलुओं की समीक्षा के बाद ही वे पर्यटन व सैर सपाटे का कार्यक्रम बनाएंगे।
बहरहाल विकलांग लोग मानव समाज का एक हिस्सा है और जब सामाजिक विभाग व क्षेत्र कोरोना से प्रभावित होता है तो ये बात निश्चित है कि विकलांग लोगों का जीवन भी प्रभावित होगा और उनके जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर विकलांग लोगों की सहायता और उनके विकास के लिए कार्यक्रम नहीं बनाया गया तो समाज उस तरह से विकास, प्रगति व उन्नति नहीं कर सकेगा जैसा कि करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि वाहन सही तरह से आगे बढ़े और अच्छी गति से चलें, तो उसके सारे पहिए और इंजन का हर दृष्टि से ही सही होना जरूरी है। अगर एक वाहन में चार पहिया हो और चारों में से केवल एक पहिया खराब हो या उसमें कोई समस्या हो तो वाहन तीव्र गति से आगे नहीं बढ़ सकता। उसी तरह कोई भी समाज विकलांगों की सहायता किए बिना उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता जैसा कि उसे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि विकलांग हमारे समाज का एक हिस्सा है।
विकलांगों के विकास के लिए सही कार्यक्रम बनाए जाने का ही परिणाम है कि अभी कुछ दिन पहले विश्व जनमत ने देखा कि जापान में होने वाले खेलों के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में विकलांगों ने भी भाग लिया और कुछ स्थानों पर उनके लिए बनाए गए कार्यक्रम के परिणाम में वे इस बात को सोचने लगे हैं कि विकलांगता उनकी गतिविधियों में सीमा उत्पन्न नहीं कर सकती। अभी कुछ दिनों पहले जापान की राजधानी टोक्यो में खेलों के जो अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हुए थे उसमें विकलांगों की जो ईरानी टीम थी उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अब तक वो कई बार मेडल भी प्राप्त कर चुकी है और उसमें भी ईरानी झंडा लहराया। यद्यपि विकलांगता के रास्ते में अभी भी बहुत सी समस्याएं हैं, परंतु इन कार्यों के माध्यम से विकलांग लोगों के दिलों में आशा की किरण उत्पन्न हो गई है।
ईरान की जवान महिला विकलांग खिलाड़ी जहरा नेमती ने दर्शा दिया कि विकलांगता के बावजूद प्रयास और लगन से बड़ी सफलता अर्जित की जा सकती है। उनका मानना है कि जीवन में हमें केवल एक बार मौका दिया गया है और इस मौके का बेहतरीन ढंग से लाभ उठाया जाना चाहिए। उनका कहना व मानना है कि विकलांगता के सामने कदापि घुटने नहीं टेकने चाहिए। मेरा मानना है कि पूरी दुनिया में खेल विकलांगों को सक्षम व मजबूत बनाने का बेहतरीन तरीका है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
पत्र संसार। दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपनी दीदी मरियम मेहर दादी और भैया अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
श्रोताओं, में आशा है कि आप सब कुशल होंगे और अपना मनपसंद कार्यक्रम पत्र संसार सुनने के लिए तैयार होंगे। कार्यक्रम में आप जानते हैं कि आपके कमेंट्स और आपके ईमेल और आपके विचार शामिल किए जाते हैं। तो देखते हैं कि दीदी आज कहां से शुरुआत कर रही हैं।
जी, ईमेल से शुरू कर रहे हैं। महाराष्ट्र से प्रशांत पुरोहित लिखते हैं, अपने सबसे पसंदीदा कार्यक्रम पत्र संसार सुनने के बाद आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मैंने आपका एक कार्यक्रम सुना था, इस्लाम और मानवाधिकार। इसमें माननीय आयाम जैसे बिंदु को प्राथमिकता दिया जाना मन को छू गया। वर्तमान समय में नॉन मुस्लिम भाइयों के मन में इस्लाम के प्रति जो धारणा है उस दशा में सही दिशा दिखाती रिपोर्ट कहना गलत न होगा, क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोगों के गलत कार्य से पूरे इस्लाम धर्म को बदनाम किया जा रहा है।
दीदी, जहाँ तक इस्लाम और मानवाधिकार की बात है, इस्लाम के बारे में दुष्प्रचार की बात है, इस्लाम के बारे में गलत धारणा की बात है, इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात ये समझनी है कि इस्लाम के खिलाफ बहुत सुनियोजित, बल्कि कहना चाहिए कुनियोजित ढंग से प्रचार किया गया है और बहुत लंबे समय से और बहुत लंबे समय तक ये काम किया गया। पश्चिमी देश इसमें बहुत आगे आगे रहे। बेशक मुस्लिम समुदाय के भीतर भी कमियां रहीं, बहुत सी जगहों से इस तरह के काम हुए कि जो कि इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाले थे, लेकिन ये भी एक हकीकत है کہ اسلام نشانے پر رہا ہے, اسلام کے خلاف بہت بھیانک روپ سے دشپرچار کیا گیا ہے اور آج بھی کیا جا رہا ہے. اب یہ ہے کہ ان حالات میں اسلام کو صحیح پرکار سے سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے, اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کی ضرورت ہے, اور ہر ویکتی کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تتھ کو اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے. ایران کے اسلامی کرانتی کے ورشت نیتا نے پشمی دیشوں کے یوواؤں کے نام ایک پتر اسی لیے لکھا اور اس میں یہ بات کہی کہ آپ اسلام کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو جو اسلام کے اصلی سروت ہیں وہاں سے اور ان کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ جو میڈیا باتیں کرتا ہے, جو دشپرچار کرتا ہے, ان کو آدھار بنا کر اسلام کو نہ سمجھیے, تو صحیح آدھاروں اور صحیح بنیادوں سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ظاہر اس طرح کے کاریکرم اور اس طرح کے ہزاروں لاکھوں کاریکرموں کی ضرورت ہے کہ تصویر واضح ہو اور سچائی سامنے آئے.
تو بھیا اب چلتے ہیں شروتاؤں کی اور, اور اب ہم پیش کر رہے ہیں ایرانی سنسکرتی سے جڑی ایک خبر کی.
جی, اور ہمیشہ آپ کارکرم کے اس بھاگ میں یعنی جو بیچ کا ایک حصہ ہے اس میں جی آپ سنسکرتی سے جڑی خبر سناتی ہیں, اور دیدی یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ یہ خبر بہت سے لوگوں کو پسند آتی چونکہ ذرا الگ ہٹ کے ہوتی.
جی جی جی, آج بھی ہم جا رہے ہیں انار کے باغ میں.
جی,
تو ایران کے اتر میں استھت بہشہر شہر میں بہشہر پریاورن سنرکشن وبھاگ کی دیکھ ریکھ میں کھٹے انار کے پکانے کا کاریکرم سنچالت کیا جا رہا ہے. تو بھیا یہ پتجھڑ کا جب موسم آتا ہے
جی
تو انیک جو پھل ہوتے ہیں, جو رس والے پھل ہوتے ہیں, انہیں لے کر کچھ اچھے اچھے پکوان بنائے جاتے ہیں.
جی,
تو یہ ہے کھٹے انار کا جو پیس بنا جاتا ہے اس کے بارے میں. میان کالے ایران میں کھٹے انار کا ایک ماتر پراکرتک جنگل ہے. اس میں 12,000 ہیکٹر کھیتر شامل ہے جس میں 8,000 ہیکٹر گھنے ہیں اور 4,000 ہیکٹر بکھرے ہوئے اور جنگل ہیں. 68,800 ہیکٹر کے کھیتر میں پھیلے میان کالے جلاشے میں جہاں پر پلائن کرتا فلامنگو پکشی اور وشیش پرکار کے پیڑ اور پودے اور ولپت پرجاتی کے جانور پائے جاتے ہیں, اور اس میں رس بھرے انار جیسے پودوں کے ساتھ وبھن اوشدھی جڑی بوٹیاں بھی شامل ہیں. میان کالے کے انار آرگینک اور کھاد تتھا زہر رہت تتھا نیچرل ہیں. پتجڑ میں میان کالے میں پیڑوں سے کھٹے انار توڑے جانے کی ابھی شروعات ہوئی ہے. انار کا رس نکالا جاتا ہے, لگاتار 7 سے 10 گھنٹے تک دھیمی آنچ پر انار کا پیسٹ پکایا جاتا ہے. بہشہر میں میان کالے پوموگرانیٹ کوآپریٹو کمپنی میان کالے پرائدیپ کے مول نواسی اپ نگریہ نواسیوں اور غیر سرکاری سنگٹھنوں نے اس کھیتر میں 5 سہکاری سمیتیوں کی استھاپنا کی ہے اور یونیسکو اور بایوسفیئر ریزرو کے لیے پریبھاشت کیا ہے. اس پرکار میان کالے بایوسفیئر ریزرو نے انار کی کٹائی کے مادھیم سے ستھانیہ سمودایوں کے لوگوں کے لیے موسمی نوکریاں کا سرجن کیا گیا ہے. اس میں اس پریوجنا کی مان اپلبدھی پرکرتی کے ساتھ دوستی کی بھاونا پیدا کرنا اور جتنا سمبھو ہو سکے کھیتر کی پراچین اور انوٹھی پرکرتی کو سنرکشت کرنا ہے, اور اس کی آئے کو پریاورن کے لیے دان کیا جاتا ہے اور اسے سدھارنے پر خرچ کیا جاتا ہے.
خبر کے بعد دیدی آپ کمنٹ شامل کرتی ہیں, تو دیکھتے ہیں شروتا کہ دیدی کہاں سے شروع کر رہی ہیں.
جی, ایران کا پرمانو کارکرم شانتی پورن لکشوں سے ہٹا نہیں, آئیے یہ اس پر مہرداد کیسپین لکھتے ہیں, انوبھو اور ایکسپریمنٹس میں ایکسپریمنٹ سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایران کے شانتی پورن پرمانو کارکرم کے معاملے میں رافیل گراسی نہ کیول کچھ نشچت دیشوں کے پربھاؤ کے لیے ابھید ہے بلکہ وہ پرتیشودھی اور شتروتا پورن ہیں. ईरानियों के आतिथ्य का आनंद लेने और अत्यंत सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए ईरान से जाने से पहले वो हमेशा ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में सकारात्मक और आशावादी बात करता है, और जब वो ईरान छोड़ता है तो वो विपरीत करता है और हमला करता है।
ग्रोसी की रिपोर्ट, ये बात सही है कि जो रिपोर्ट उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में पेश की है वो काफ़ी हद तक विवादित कही जा सकती है, इसलिए कि IAEA का खुद रवैया ईरान के संदर्भ में बेहद आपत्तिजनक रहा है। ईरान ने बेशक इसमें संयम का परिचय दिया है। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों और परमाणु वैज्ञानिकों से जुड़ी हुई जानकारियां जो कि IAEA को हासिल हुई थी, इसलिए कि ईरान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों परमाणु कार्यक्रम के निगरानी का वादा पूरा किया था और IAEA की निगरानी में रखा था, तो वो जानकारियां लीक हुई और दूसरों तक पहुंची जो कि नहीं पहुंचनी चाहिए थी। ईरान ने इस पर आपत्ति भी जताई, तो इस तरह का रवैया रहा है IAEA का। और IAEA पर ये बात सही है कि पश्चिमी देशों का खास दबाव रहा है। अब तो विशेषज्ञ साफ साफ कहने लगे हैं कि जो संस्थाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन जो काम करती हैं वो संस्थाएं, चूंकि पश्चिमी देशों से उनको काफ़ी बजट मिलता है काम करने के लिए, तो ये देखने में आया है कि वो पश्चिमी देशों के दबाव में रहती हैं और पश्चिमी देश इन्हें हथकंडे के तौर पर अन्य देशों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं।
IRGC ने 150,000 लीटर डीजल की तस्करी करने वाले एक विदेशी जहाज को जब्त कर लिया। इस पर अहमद मोहिद्दीन लिखते हैं, USA रिजिम ने हाल ही में IRGC नेवी के ऑपरेशन के बारे में कहा, IRGC नेवी ने पानी पर भी गहरी दृष्टि रखी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने देखा कि ईरान पानी पर शासन करता है, ईरान ने अमेरिका पर काबू पा लिया है। USA दूतावास ने कई महीनों तक बचाव की कोशिश की लेकिन कभी सफल नहीं हो सका, और तब से USA दूतावास ईरान के हाथ में है। हालांकि अमेरिका के कई राष्ट्रपति या तो बदल गए या कब्र में दफन हैं।
इनका इशारा मेरे ख्याल से ईरान में अमरीकी जासूसी के अड्डे पर कब्जे की तरफ है।
सही कहा,
ईरान में तेहरान में अमरीका का दूतावास जासूसी का केंद्र बना हुआ था, और वहाँ से ईरान की इस्लामी क्रांति के खिलाफ, ईरान में नवगठित इस्लामी लोकतांत्रिक शासन के खिलाफ साजिशें रची जा रही थीं और संचालित की जा रही थीं। ईरानी छात्रों ने एक कार्यवाही करते हुए दूतावास पर कब्जा कर लिया, और वहाँ से जो दस्तावेज़ बरामद हुए उनसे साबित हुआ कि अमरीकी दूतावास ईरान में जासूसी की गतिविधियाँ कर रहा था, साजिशें रच रहा था। और अब बारी है अपने किसी श्रोता के विचार सुनने की, तो दीदी आप बताइए श्रोताओं को कि आपने इस हफ्ते के लिए किसका चयन किया है।
जी, मुंबई महाराष्ट्र से अब्बास जैदी, इनके विचार पेश हैं।
हिंदी रेडियो तेहरान, सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। मेरा नाम सैयद ज़ैगम अब्बास जैदी है और मैं भारत के महाराष्ट्र स्टेट के मुंबई नगर का रहने वाला हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हिंदी रेडियो तेहरान का के पुराने श्रोताओं में से हूं, लगभग 15 साल से आपसे जुड़ा हुआ हूं। आपके इस रेडियो स्टेशन के माध्यम से हमें काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। अद्भुत यह है कि आपने हम श्रोताओं के लिए नए युग से कदम मिलाते हुए अपनी वेबसाइट, फेसबुक अकाउंट और ट्विटर अकाउंट जैसी सुविधाओं से अवगत कराया है, और नई ऊंचाइयों को छूते हुए व्हाट्सएप समूह का गठन भी किया है कि जिसके द्वारा हमें सही जानकारी प्राप्त होती है, सही समाचार मिलते हैं और हमारे ज्ञान में काफ़ी कुछ बढ़ोतरी होती है। आपके द्वारा हमें पूरे विश्व समेत इस्लामी जगत की सही और सच्ची जानकारी प्राप्त होती है, और हम 15 साल से लगभग नियमित रूप से आपकी सभी सुविधाओं से लाभ उठा रहे हैं। आगे भी मैं यही चाहूँगा कि मैं और मेरे जैसे तमाम श्रोता आपसे जुड़े रहें और आपके द्वारा दी गई जानकारी और सुविधाओं से इसी तरह लाभ उठाते रहें और अपनी जानकारी और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। मैं अंत में आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप आगे भी ऐसे कार्य करते रहें और हमें ज्ञान देते रहें, सही जानकारी देते रहें, सच्ची जानकारी देते रहें। मैं आपका आभारी हूँ और मुझे से सभी श्रोता आपके आभारी हैं।
तो दीदी, बहुत अच्छे विचार पेश किए हमारे श्रोता ने। अब हम कार्यक्रम के अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। बस श्रोताओं से एक बार हम ये अनुरोध फिर करना चाहेंगे कि अपने विचार हमें ज़रूर भेजें। अपना वॉइस नोट अगर भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से तो वो भी ज़रूर भेजें, पत्र संसार में उन्हें शामिल किया जाएगा। श्रोताओं के विचार दूसरे श्रोता सुनते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा प्रतीत होता है, इस पर प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी होती हैं और खुद हमारे लिए भी ये महत्वपूर्ण है।
दीदी, तो अब आप हम पते बता देते हैं भैया। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir और व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098-9035065492।
तो इसी के साथ कार्यक्रम पत्र संसार समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम तक अहमद अब्बास और दीदी मरियम मेहरदादी को अनुमति दीजिए।
खुदा हाफिज।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, आपने अभी अपना मनपसंद कार्यक्रम सुना, पत्र संसार। कार्यक्रम आपको कैसा लगा और हमारे दूसरे कार्यक्रम भी आपको कैसे लगते हैं, इस बारे में आप अपने विचार हमें अवश्य लिख भेजिए। और इसी के साथ अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। खुदा हाफिज। Oh,